والتفت الساق بالساق, اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی. تو ایک معنی یہ ہے کہ مرنے کے وقت جب ٹانگیں سوکھ کر ایک دوسرے سے جڑ جائیں گی, اور دوسرے معنی یہ ہے کہ شدت سختی اور مصیبت کے وقت اہل عرب یہ محاورہ بولا کرتے تھے. تو پنڈلی کا دوسری کے ساتھ لپٹ جانا گویا کہ وہ وقت بہت بے چینی کا اور اضطراب کا ہوگا. اور بعض اوقات اگر کسی نے کسی کی جو ہے وہ جان نکلتے ہوئے دیکھی ہو, میں نے خود جو ہے وہ ایک موقع پر دیکھا کہ جیسے ٹانگیں زور زور سے جو ہے نا پٹک پٹک کر, نہیں کوئی مارتا, کبھی آپ نے کسی جانور کو جو ذبح کر دیا جائے تو اس کو آپ نے جو ہے وہ دیکھا ہو کہ کیسے وہ پٹک پٹک کر اپنی ٹانگیں مارتا ہے نا. تو ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھا ہوا ہے, اب حرکت دے کر ہٹانا بھی چاہے تو قدرت نہیں ہے کہ ہٹا سکے. ایک وقت ایسا بالکل بے روح اور بے جان, اور دوسری طرف جو ہے یہ قیامت سے پہلے ہی موت کی سختی کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے. والتفت الساق بالساق, اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی. الی ربک یومئذ المساق, وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف روانگی کا. مساق کا روٹ بھی سوقی ہے, سین موقاف. تو جب یہ مشکل وقت آئے گا تو وہ دن ہوگا تیرے رب کی طرف جو ہے وہ جانے کا. اور آپ دیکھ لیں کہ یہ جو طراق ہے, یہ جو آپ نے آیت نمبر 26 میں بھی پڑھا را قاف یا, جس کے میں نے دو ترجمے کیے, ایک تو جھاڑ پھونک کرنا اور دوسرا میں نے کیا ترجمہ کیا, چڑھنا اوپر چڑھنا. اچھا یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اسلام میں یہ جھاڑ پھونک کرنے کی کیا حیثیت ہے, یہ بھی ہمیں جو ہے وہ پتا ہونا چاہیے کہ تعویذ گنڈے باز لوگ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ ابو بشیر انصاری فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں اپنے آرام کے ٹھکانے میں تھے, اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ یہ پیغام بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت, جیسے وہ گرا لگا کر ڈالا ہوتا ہے نا گنڈا, یا تانت یا گنڈا ہو تو وہ کاٹ ڈالا جائے. یہ بخاری کی روایت ہے کہ اگر گلے میں کوئی چیز ایسی ڈالی ہوئی ہے تو اس کو کاٹ دیا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد بیعت کے لیے حاضر ہوا, آپ نے ان میں سے 9 کی بیعت لی مگر ایک کی نہ لی. وجہ پوچھنے بتایا کہ اس نے تعویذ پہنا ہوا ہے, پھر ہاتھ ڈال کر اس کا تعویذ کاٹ ڈالا اور بیعت لے لی. اور پھر فرمایا کہ من اللہ کا تمیمتن فقد اشرک. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ ایسے تعویذ اور ایسی چیزیں کہ غلط طریقہ غلط چیزیں جو ہے وہ گلے میں ڈال لیتے ہیں, تو یہ چیز جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. مسنون طریقہ کیا ہے جھاڑ پھونک کرنے کا, اس کا یہ نہیں مطلب کہ کیا نہیں جا سکتا. مسنون طریقہ کیا ہے کہ مریض پر قرآن کی آیات یا مسنون دعائیں پڑھ کر دم کیا جائے, لیکن جو دم یا جھاڑ کے الفاظ ہیں نا پوری طرح سمجھ میں آنے چاہیے, اور اس میں شرک کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اگر شرک کی کوئی بات ہو یا ایسی کوئی چیز ہے تو پھر جو ہے وہ دم نہیں کرنا چاہیے, اور اگر ایسی بات ہو تو پھر جو ہے وہ جس میں کوئی شرکیہ کلمات یا چیزیں نہیں ہیں تو کر سکتے ہیں. جیسے حضرت عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں منتر کیا کرتے تھے. ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ نے فرمایا اپنے منتروں کو میرے سامنے پیش کرو, اگر اس میں شرک کا مضمون نہیں تو کچھ قباحت نہیں. اسی طرح جو ہے ہمیں کیا بات پھر پتا چلتی ہے کہ حضرت عثمان جو ہیں بن ابی عاص کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے شکوہ کیا کہ جب سے میں اسلام لایا ہوں میرے بدن میں کچھ درد سا رہتا ہے. آپ نے فرمایا اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھو اور تین مرتبہ بسم اللہ کہو, پھر 7 بار یہ کہو اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر, میں اللہ سے اس برائی سے پناہ مانگتا ہوں جسے میں پاتا ہوں جسے میں ڈرتا ہوں. پھر اسی طرح جب کوئی بیمار ہوتا تو رسول اللہ اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے پھر فرماتے اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. تو مسنون دعائیں, قرآن کی آیات, معوذتین, چاروں کل, سورۃ فاتحہ, آیت الکرسی اور ایسی بہت سی جو ہے وہ آیات یا سورتیں پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ جب کسی مریض پر دم جھاڑتے تو فرماتے بسم اللہ تربتو اردنا بریقتی بادنا یشفی سقیمنا بے اذن ربنا, کہ اللہ کے نام سے ہماری زمین کی مٹی میں سے किसी के थूक से हमारे मालिक के हुक्म से मरीज को तंदुरुस्त कर देगी। जैसे आप मट्टी लगाते हैं और फिर कहते, तो इससे क्या बात पता चलती है कि शिरकिया अल्फाज वाला दम जो है वो नहीं करना चाहिए, अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। और दूसरी बात यह कि मसनून जो हमें दुआएं मिलती हैं या आयात या हदीस, तो उसको पढ़कर दम किया जा सकता है। और आपको सूरत फातिहा से बिच्छू के दम काटे का इलाज वाली हदीस तो याद होगी ना, जो अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु की रवायत वाली आपने सूरत फातिहा की तशरीह में पढ़ी थी। अच्छा, यहाँ पे दम दारू क्यों कहा जा रहा है? जब मौत का वक्त होता है ना, तो दम दारू भी कोई फायदा नहीं देता। क्यों? वो दिन होता है तेरे रब की तरफ रवानगी का, और हम आए दिन अपनी जिंदगी में ऐसे वाकयात देखते हैं कि फिर जो है वो दम दारू ने भी कुछ ना काम किया, तो जो दिल की बीमारी थी, मौत का जो वक्त था, आखिर उसने काम जो है वो तमाम कर दिया। तो तिलावत सुनिए। अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। तो आगे की आयात जो हैं, आयत नंबर 31 से 35 तक काफिरों का एक और किरदार बगैर नाम लिए जो है वो यहाँ पे पेश किया गया है, और मुफस्सरीन ये कहते हैं कि इससे मुराद जो है वो अबू जहल है, क्योंकि अबू जहल ने जो है कयामत का इनकार किया और आयतें नाजिल हो गई। और या फिर ये कि अबू जहल भी हो सकता है, और जैसे अदी बिन रबिया ने भी इनकार किया था ना, तो हर वो शख्स जिसने इनकार किया, लेकिन बाद मुफस्सरीन जो हैं कहते हैं कि ये अबू जहल था। फला सद्दका वला सल्ला, मगर उसने सच ना माना और नमाज ना पढ़ी। तो इससे क्या मुराद है कि उसने ना तस्दीक की और ना ही नमाज जो है वो अदा की। तो असल में इसके मानी ये हैं कि वो जो था वो इतना ज्यादा इनकार करने वाला था कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और कुरान पर और इस्लाम पर ईमान ही ना लाया। और जो है अगर वो कुरान की तस्दीक करता, اسلام کی تصدیق کرتا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتا، تو پھر کیا کرتا کہ وہ نماز بھی پڑھتا اور جو ہے وہ آپ پر ایمان بھی لاتا. تو افسوس کہ نہ تو وہ ایمان لایا اور نہ ہی جو ہے اس نے نماز پڑھی. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو قیامت کا انکار کرتے ہیں تو ان کا کیا حال ہوتا ہے. تو وہ کیسے ہوتے ہیں کہ نہ ایمان ہے، اور ایمان کی تصدیق سب سے پہلے کس سے ہوتی ہے؟ نماز سے. تو نہ ایمان ہے اور نہ ہی تصدیق ہے. ولیکن کذب وتولی، پھر اس نے جھٹلایا، وتولی اور چل دیا. وتولی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کہ روح گردانی کی. رسول کو بھی جھٹلایا اور ایمان اور عطا سے روح گردانی کی. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ چلا گیا اپنے گھر والوں کی طرف. یتمطا، یتمطا کا لفظ بہت عام ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف جب گیا تو اس کا حال یہ تھا کہ یتمطا کی کیفیت میں تھا. اس کے معنی ہوتے ہیں، اس کا روٹ ہے میم توئے واو، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہے کہ اکڑنا، اترانا. تو جیسے اونٹنی کا جو ہے وہ جیسے کھلا کھلا ہو کے پھیل پھیل کر چلنا، اس کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں تو اترانے کے لیے قرآن میں ہمیں ایک لفظ نہیں ملتا، کئی الفاظ جو ہے وہ ملتے ہیں، اور اس میں سے جو یہ لفظ ہے اس کے اندر بڑی ہی شدت پائی جاتی ہے. یتمطا ساتواں درجہ ہے. قرآن میں اترانے کے لیے 9 لفظ آئے ہیں اور یتمطا ساتواں درجہ ہے. چلنے میں گھمنڈ سے بازو پھیلانا، تو وہ اونٹنی جو بازو پھیلاتے ہوئے چلے. بے نیازی کا اظہار کرنا، بازو پھیلا کر گھمنڈ سے تیز تیز چلنا، ساتواں درجہ ہے. بعض لوگ جو ہے نا بازو کھول کر اکڑ کر اور غرور اور کبر کے ساتھ چلتے ہیں، تو یہ کون تھا؟ یہ ابو جہل تھا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور پھر وہ اپنے گھر والوں کی طرف آیا کیسے؟ اکڑا ہوا، اکڑتا ہوا. اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پہ اولا لفظ جو استعمال کیا گیا ہے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ویلون سے، تو ویلون سے اولا اسم تفضیل ہے، سپرلیٹیو ہے. دوسرے اس کے معنی ہیں وہ لام یا سے، قریب کے معنی میں ہے کہ قریب ہی ہے تیرے لیے، قریب ہی ہے تیرے لیے کیا چیز؟ ہلاکت، قیامت، بربادی. اور یا پھر یہ کہ ویل جو ہے یہ جہنم کی وادی کا نام بھی ہے. اولا لکا فاولا، تو یہ ابو جہلی کے لیے یہ چیز جو تھی یہ بہتر تھی کہ اس کا انکار کرنا، اس کا جو ہے وہ پھر چل پڑنا، اس کا اترانا یا تمتع. اب اسی کے لیے جہنم تیار کی گئی ہے اور اس کی وادی. ثم اولا لکا فاولا، ہاں یہ روش تجھے ہی زیب دیتی ہے. تو معنی کیا ہے؟ کہ یہ واقعی تیرا ہی یہ کردار ہو سکتا تھا، یہ چال تیری ہی ہو سکتی تھی کہ تو نبی کا انکار کرے، جرت تیری ہی ہو سکتی تھی کہ تو اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے. قرآن مجید میں آپ پڑھی چکی سورت دخان آیت 49 میں کہ دوزخ میں عذاب دیتے ہوئے مجرم انسان سے کہا جائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ لے اس عذاب کا مزہ، تو اپنے آپ کو بڑا ہی زبردست اور عزت دار آدمی سمجھتا تھا. تو یہی وہی بات ہے، اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا. تو ابو جہل چونکہ بہت امیر تھا، مال و دولت کی جو ہے وہ اس کے گھمنڈ میں مست رہا، تو اب اس کے مرنے پر کہ اسی حالت میں وہ مر گیا، تو چار مرتبہ جو ہے ہلاکت اور بربادی استعمال کیا گیا. اولا نمبر ایک، فاولا نمبر دو، ثم اولا نمبر تین، اور پھر فاولا نمبر چار. تو اتنا زیادہ اس کے اندر انکار پایا جاتا تھا تو اتنی دفعہ اس کے لیے بربادی. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں آیت نمبر 31 میں فلا صدق کا ایک، ولا صلا نمبر دو، ولا کن کذب نمبر تین، و تولا چار، اور نمبر پانچ کیا ہے؟ ثم ذهب الى اهله يتمطى، جیسے جیسے اس نے جھٹلایا اور اترایا ایسے ایسے اس کے لیے عذاب ہے. اور آخری جو آیتیں ہیں یہ ہمیں پھر کیا بتا رہی ہیں؟ ये इंसान को झंझोड़ रही हैं, उसके जमीर को बेदार कर रही हैं, गफलत की जिंदगी पर पानी के छींटे दे रही हैं। ए नींद के मातो, ए दुनिया से मोहब्बत करने वालों, ए अल्लाह और अल्लाह के रसूल का इनकार करने वालों, ए दुनिया की जिंदगी पर लट्टू हो जाने वालों, ए दुनिया की जिंदगी पर ढेर हो जाने वालों, अय्या सबुल इंसान हूं अं उतरा का सुदा। क्या इंसान ये समझ रखा है उसने कि वो यूं ही छोड़ दिया जाएगा, क्या उसे बेकार छोड़ दिया जाएगा? इसके माने क्या हैं? अरबी जबान में इबुलुन सुदन उस ऊंट को कहते हैं जो रस्सी से बांधा वाना हो, बगैर बांधे यूं ही छूटा फिर रहा हो, जिधर चाहे जाए, कोई उसकी निगरानी करने वाला ना हो। हम उर्दू में भी कहते हैं शुतरे बेमुहार, उसको तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो शुतरे बेमुहार का मतलब है जो गैर जिम्मेदार लोग हैं, जिनके ना कोई फराइज ना जिम्मेदारियां। बाज औरतें भी बहुत घूमती फिरती हैं, ना बच्चों का ख्याल, ना शौहर का, ना घरों का, तो लोग कहते हैं कि उसको तो कोई पूछने वाला नहीं है जी, वो तो शुतरे बेमुहार है। तो यहां बताया जा रहा है कि ए इंसान, क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुझ पर ऐसा वक्त नहीं आएगा जब तेरी पूछगिछ हो सके, जब तेरा हिसाब किताब हो? तो गोया के यहां पर जो है इंसान को अमाल की बाजपुर से डराया जा रहा है। कयामत के रोज अल्लाह ताला कुफार से फरमाएगा, अफा हसिब तुम अन्नमा खलकनाकुम अबसं वन्नकुम इलैना ला तुरजाउन। क्या तुमने ये समझ रखा था कि हमने तुम्हें फजूल ही पैदा किया है और तुम्हें कभी हमारी तरफ जो है वो पलट कर नहीं आना? फिर आप देखें कि आपने सूरत फजर में भी यही बात पढ़ी। क्या पढ़ा सूरत फजर में? कि जब कयामत आ जाएगी, कल्ला इजा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का वजा रब्बुका वल मलकु सफ्फन सफ्फा वजी यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसान वअन्ना लहुज़ ज़िक्रा यकूलु या लैतनी क़द्दमतु लिहयाती फयौमइज़िन ला युअज़्ज़िबु अज़ाबहु अहद वला यूसिकु वसाक़हु अहद। तो उस दिन इंसान याद करेगा ना कि अब क्या करूं, लेकिन उस दिन जो है ना भाग सकेगा, ना हसरत, ना अफसोस, ना मुहासबा, ना पछतावा, ना ये कि दुनिया की जिंदगी में एक दफा फिर लौटा दिया जाऊं। कोई चीज ऐसी नहीं होगी जो कयामत के दिन इंसान को जो है वो फायदा दे सके। ये मजमून कुरान में बार बार आया है, बार बार आया है। और आप देख लें कि सूरत मोमिनून में भी आप पढ़ चुके कि यअइदुकुम अन्नकुम इज़ा मित्तुम व कुंतुम तुराबं व इज़ामन अन्नकुम मुखरजून हई हाता लिमा तुअदून। सूरत मोमिनून में फिर ये भी पढ़ा कि इंसान जो है वो क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि आगे भी बदामालियां करता रहे, उस दिन वो परेशान होगा, पछताएगा। क्या कहेगा अल्लाह ताला? कहते हैं قال عما قليل لله يصبحون نادمين, तो कि उस दिन लोग जो हैं वो अपने कियों पर नादिम होंगे। तो हम सबको भी ये सोचना चाहिए कि जब नमाज नहीं पढ़ते तो क्या हम दोबारा उठाए नहीं जाएंगे, कि अल्लाह पूछेगा नहीं? जब जबान की हिफाजत नहीं करते तो डर नहीं लगता कि अल्लाह पूछेगा? जब किसी को चीट करते हैं, रिश्ता करते वक्त, कारोबार करते वक्त, जो है किसी को घर किराए पर देते वक्त, घर बेचते वक्त, उसके ऐप छुपा लेते हैं, तो भूल जाते हैं कि क्या फिर दोबारा जिंदा नहीं होना और हिसाब किताब नहीं होना। अय्या सबुल इंसान वहीं युतरा का सुदा, क्या इंसान ने यह समझ रखा है कि वहीं छोड़ दिया जाएगा? अलम यकुन नुत्फतम मिन मनीयिन युम्ना, क्या वो हकीर पानी का नुत्फा ना था जो मह जो है वो रहम मादर में टपकाया जाता है? तो इंसान की हैसियत क्या है? एक हकीर से पानी के नुत्फे से इंसान जो है वो दुनिया में वजूद में आता है। और ये नुत्फा जो है ये कहते किसे है? कहते हैं निहायत कलील मिकदार जो है ना, जैसे बर्तन में से आप पानी उंडेल लें तो जो एक आध कतरा पानी का उसके अंदर रह जाए ना, उसको नुतफा कहते हैं। और जो है ये वही बात है कि वो हकीर सा नुतफा जो है वो औरत का औरत के जब रहम में टिपकाया जाता है मर्द का, तो फिर इंसान जो है वो वजूद में आता है। तो ये हकीर सा नुतफा कुरान में कम से कम 11 मर्तबा इंसान को नुतफे से तखलीक किया गया जो है वो इस्तेमाल किया गया। और फिर कहते हैं कि ये जो स्पर्म्स हैं और इसमें से सिर्फ यानी 30 लाख होते हैं ये स्पर्म्स, इसमें से सिर्फ एक की जरूरत होती है और वो एक जो है वो औरत के जो है वो उसमें जब यूट्रस में दाखिल हो जाता है तो फिर होता क्या है कि फिर इंसान वजूद में आता है। तो क्या वो एक हकीर पानी का नुतफा ना था? मनी ये यमुना इन दोनों का रूट एक ही है, मीम नून या, वो हकीर पानी का जो है वो नुतफा यानी वो जो मनी है जिसको टपका दिया जाता है। तो अब असल में ये इंसान की जो तखलीक के मराहल हैं उसकी तरफ जो है वो इशारा किया जा रहा है कि मीम नून या के मानी है टिपकाना, कि जब उसको टपकाया जाता है सुम्मा काना अलकतन फखलक फसवा, फिर वो उसी से अलग बना। अलग के मानी क्या होते हैं? लोथड़ा। फखलक फिर उससे जो है वो अल्लाह ने बनाया, कैसे? इंसान की तखलीक की जिस्म बनाया, फसवा बिल्कुल जो है अज़ा जो थे वो दुरुस्त कर दिए। और अल्लाह ताला कुरान में इस मजमून को बार बार बयान करते हैं कि या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलकका फसव्वाका फअदलक फी अय्यि सूरतिम माशा रक्कबक। यहाँ पे भी वही बात है, फजअला मिन्हु ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, फिर अल्लाह ताला ने इससे जो है वो बना दिए ज़ौजैन। ज़ौज जो है किसे कहते हैं? मियां को भी कहते हैं, बीवी को भी, मर्द और औरत के लिए आता है। अब यहाँ पे ज़ौजैन के मर्द और औरत की दो किस्में बना दी। तो आप देखेंगे जिस तरह एक बीज है ना, एक बीज के अंदर पूरा एक जैसे कंप्यूटराइज्ड निजाम होता है एक बीज के अंदर, के कैसे इसने उगना है, कैसे कहां से फिर पत्ते निकल रहे हैं, कैसे इसकी जो है वो स्टेम तने ब्रांचेस सब चीजें बनेंगी। इसी तरह वो एक हकीर पानी के नुतफे के अंदर ना पूरा कंप्यूटराइज निजाम होता है कि कैसे ये जाएगा, कौन सा जाएगा जो औरत के अंदर जाकर फिर उसे तखलीक होगी, या लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। फिर उसके बाद क्या होता है कि फिर जो है कहां पे नाक बनना है, कहां पे आंखें, कहां सर, कहां हड्डियां, कहां गोश्त, कहां खून, कहां रगें और कहां पांव, एक एक जो है ना उसको पता होता है कि कहां, और खुद ब खुद वो जुड़ते चले जाते हैं। कंप्यूटराइज सिस्टम है ना, जैसे कंप्यूटर के अंदर फीड किया हुआ खुद ब खुद बाहर आना शुरू हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और खैर कंप्यूटर की तो अल्लाह के इस निजाम से कोई निस्बत ही नहीं है, लेकिन आप देखें आप क्या करते हैं कि आप जितनी भी बात होती है तो कंप्यूटर में क्या डालते हैं, एक चिप है ना, डिजिटल रिकॉर्डर में क्या करते हैं कि सब चीज जो है कंप्रेस करके कितनी बड़ी बड़ी चीजें जो है, कितनी बड़ी बड़ी बातें उसके अंदर डाल दी जाती है ना। और क्या करते हैं कि कई घंटों पर मुश्तमिल तकरीर को किसके अंदर डाल देते हैं आप लोग, कि आप जो है अब आप देखें ना ये कितने आले कैसी ऐसी चीजें निकल आई है ना, कि बच्चे उसको इस्तेमाल करते हैं घर में, उन्होंने सारा होमवर्क किया वो किसमें डाल लेते हैं, आईपॉड पे डाल लेते हैं, और किसमें डालते हैं जिसको कंप्यूटर के अंदर लगाते हैं, यूएसबी है, और वो कई घंटों की होती है और नई नई हर रोज निकलती चली जाती है। तो यूएसबी का इस्तेमाल, डिजिटल रिकॉर्डर का, आईपॉड का, और फिर सारे लोग भागे फिरते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लाह ताला ने भी इस कायनात को जो है कंप्यूटराइज जैसे एक डिसिप्लिन है, और यहाँ इंसान की तखलीक जो एक छोटी दुनिया है उसका जिक्र किया जा रहा है। अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता, क्या वो इस बात पर कादिर नहीं है कि मरने वालों को फिर से जिंदा कर दे। तो यहाँ पे पहले दो दलीलें आपने क़यामत पर पढ़ी थी, एक खुद क़यामत का वजूद और दूसरा जो है नफ्से लवामा, और आखिर में दोबारा दलील दी जा रही है इंसान के वजूद से कि जो रब इंसान को पहली दफा पैदा कर सकता है तो उसको दोबारा पैदा करने पर जो है वो कादिर क्यों नहीं है। हाँ इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह जो है वो इंसान को दोबारा पैदा कर सकता है। अच्छा फिर करना क्या चाहिए, ये जो जब आयत पढ़ेंगे आयत नंबर 40, तो इस सिलसिले में हमें जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से ये बात पता चलती है कि क्या करना चाहिए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स वह तीन ही वज़ैतून ही पढ़े और अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमुल हाकिमीन पर पहुंचे तो यूं कहे, बला व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। इसी तरह जो शख्स सूरत ला उक्सिमु बियौमिल क़यामा सूरत क़यामा पढ़े और अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युहयिल मौता पर पहुंचे तो बला जो है वो कहे, और इसी तरह सूरत जो है वो वल मुरसलात पढ़े, फबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून पर जब पहुंचे तो यूं कहे, आमन्ना बिल्ला। तो हमें फिर क्या पढ़ना चाहिए कि इस आयत पर पहुंचने के बाद जो है हमें ये दुआ पढ़नी चाहिए और ये बात कहनी चाहिए, बला व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, कि हाँ क्यों नहीं हम इस बात पर गवाही देते हैं। तो ये थी सूरत क़यामा जो ये बता रही है कि इंसान जो है वो इतने हकीर से नुतफे से पैदा होता है और जब जो है वो पैदा हो जाता है तो फिर वो कैसे गुरूर और तकबर करता है और कैसे अल्लाह को भूल जाता है और ये भूल जाता है कि मुझे मरना है और अल्लाह के पास जाना है। एक मुसाफिर था कुछ देर ठहरा यहाँ, अपनी मंजिल को आखिर रवाना हुआ, बात कल की है महसूस होता है यूं जैसे बिछड़े हुए एक जमाना हुआ, है ना। तो हम सबको दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। सूरत अल क़यामा बड़ी जबरदस्त सूरत है और अक्सर लोगों को जो है ये 29वां पारा हिफ्स भी होगा और सूरत क़यामा भी। तो असल बात यह है कि हमें ये चीज हिफ्स होनी चाहिए कि मरना है और अल्लाह के पास जाना है, तो आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। बिमा कद्दमा व अखर, ये चीज मुझे हर वक्त डराती रहे, मैं कौन सी चीजें जो पीछे छोड़कर जा रही हूं, मैं कौन से अमल हैं जो आगे भेज रही हूं, नेकी के कामों में मेरा कितना हिस्सा है, किसी भी नेकी के काम में मेरा क्या हिस्सा है। तो क्या करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए और सदका जारिया की फिक्र करनी चाहिए, कुआं खुदवा दूं, मस्जिद बना दूं, मसल्ला वहां पे जो है वो मसल्ले की कारपेट की जगह ले दूं, या ये कि कुछ सीढ़ी जो है वो बन रही है तो उसमें सदका जारिया दे दूं, या ये कि क्लास हो रही है तो लोगों को बुलाऊं। और आज क्लास खत्म होने का दिन है, अब खत्म होने के दिन करीब आ रहे हैं, तो आप में से हर शख्स सोचे कि इस क्लास में मेरा क्या हिस्सा है, मैंने कितने फ्लायर बांटे, मैंने कितने जो है वो लोगों को दावत दी, मैंने कितने डॉलर इसमें दिए, मैं कितनी बाकायदगी से आई, मैंने कितने इम्तहान दिए, मैंने इस क्लास की शान शौकत में कितना इजाफा किया। ये कुरान की क्लास है ना। तो अब फिर नई क्लास की तैयारी है तो उसमें अपना हिस्सा डालें, जब मैं और लोगों को भेजूं ताकि वो भी जो है वो दीन को सीखें और सिखाएं और चिराग से चिराग जले। सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।